राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद, जय गोपाल जय गोपाल, जय राधा वर दीन दयाल। जय गोपाल जय गोपाल, जय राधा वर दीन दयाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सब लोग पुकारिए, बिना संकोच पुकारिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे गोपाल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हे गोपाल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जय राधा माधव जय राधा माधव, राधा माधव जय राधा माधव, जय राधा माधव जय राधा माधव, राधा माधव जय राधा माधव। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा,
श्री श्री राधा माधव भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौर गौरनिथाई की, गिरिधारी गोपाल की, गौ माता की, गुरु परंपरा की, गुरुदेव की, निताई गौ प्रेमानंदे, श्री श्री राधा पार्थ सारथी महाराज की, श्री राधा राधिका रमण भगवान की, श्री वृंदावन धाम की। हरे कृष्ण। कैन वी हैव दिस स्पेस फिल्ड अप? साक्षी देवी, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सब लोग एक दिल से पुकारो, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये, प्रणमामि हरिप्रिये, प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा गुरुदेव, हरे कृष्णा। सब कुछ भूल कर कथा सुनना आप दोनों, क्योंकि सिमुंतनयन संस्कार में एक और हिस्सा होता है कथा सुनना भगवान की। गर्भवती माता को निरंतर संतुष्ट रखना ये पति का बहुत बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि जितना समय संतुष्टि में और आनंद में बीतेगा उतने ही प्रपोर्शन में बच्चा भी आनंद में रहेगा। जितना कष्ट उसका होगा, उसको होगा मानसिक, उतना ही कष्ट बालक को होगा। बालक का व्यक्तिमत्व जो है वो गर्भावस्था में जो भी संस्कार आप उसको दे रहे हैं उससे बनता है। पहले तो जो भी हमारी चेतना है, जो भी हमारी चेतना है उसी के अनुसार आत्मा आती है। तो पहला पॉइंट तो वहीं पर है, जिस स्थिति में आपका शरीर है उसकी तरह दोनों का, जिस स्थिति में आपकी मानसिकता है उस समय, भावना किस जगह पर है उस समय आपका सामाजिक स्थिति कैसी है, यानी कि रिश्ते नाते प्रेम पारिवारिक कौटुंबिक स्थिति कैसी है उसके अनुसार, और आपकी आध्यात्मिक स्थिति कैसी है, चेतना कैसी है उसके अनुसार। ये चारों और पांचों और बाकी सारे जितने भी लेवल्स हैं आपके, उसी के अनुसार जीव गर्भ में आकर्षित होता है। इसलिए गर्भधारणा के लिए शरीर को भी स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। शरीर बहुत मोटा हो या शरीर में कुछ व्याधि हो या आलस्य हो, वैसे ही जीव आता है उसी के अनुकूल। इसलिए आयुर्वेद में बहुत गर्भावस्था होने के लिए, गर्भधारणा के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है, पहले मन की भी करनी पड़ती है, शरीर की भी करनी पड़ती है, आत्मा की भी करनी पड़ती है, उसी के अनुसार परफेक्ट जीव आपके गर्भ में आएगा। इसलिए आगे जाकर जैसा जीव बनेगा ना, उसकी पूरी जिम्मेदारी माता पिता की ही होती है। आगे वो जो भी कुछ करेगा, बुरा करेगा या अच्छा करेगा, उसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपके ऊपर है, क्योंकि आपने जो भी बोया है वही ऊपर आया है। एक बार आपने सिलेक्शन कर लिया आपके अनुकूल जीव का, उसके बाद 9 महीने जिस वातावरण में आप रहेंगे वैसे ही संस्कार उस पर होंगे। मानसिकता, मानसिक भाव से और स्वास्थ्य के रूप से, आपका स्वास्थ्य कैसा रहा, आपका भाव कैसा रहा, भगवान के प्रति आपका भाव कैसा रहा, उसका सम टोटल जो है ना, वो उसके अंदर प्रवेश करता है। तो आपके हाथ में बहुत कुछ है, ऐसा मत समझना कि आप ऐसे असहाय हो और क्या करें अभी, कर्म धर्म संयोग से ये आ गया हमारे गोद में, ऐसा नहीं होता है। वो आपके हाथ में बहुत कुछ होता है, कर्म तो होते ही है, लेकिन कर्म के अलावा भी स्वातंत्र्य, इंडिपेंडेंस, क्या करना है और क्या नहीं करना है, बहुत कुछ आपके हाथ में होता है। और वो एक ही चीज के बल पर हम हमारी और हमारी संतति की गति जो है ना, वो बदल सकते हैं। एक ही चीज, क्या चीज है वो? इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र, क्या करना है आपको, इसका अगर आप सही उपयोग करेंगे आपके स्वातंत्र का, तो आप अपने और अपने बालकों का जो जीवन यात्रा है उसकी दिशा पूर्णता से बदल सकते हैं। माता पिता के हाथ में बहुत शक्ति होती है, संस्कारों के माध्यम से वो अपने संतान को भगवान धाम में पहुंचा सकते हैं। जरूरी नहीं कि अभी शरीर छोड़कर जाना है, शरीर में होते हुए भगवत धाम में आप रह सकते हैं और शरीर समाप्त होने के बाद भी वहां पर जाने का योजना आप बना सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में है। तो इसलिए संतुष्टि बहुत आवश्यक है। बस संतुष्टि ये ऐसा विषय है कि वो थोड़ा गहन भी है, थोड़ा सरल भी है। अगर आप सरल हैं तो ये विषय भी सरल है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखते हो, ऐसे होना चाहिए, पति ने ऐसे करना चाहिए, माता पिता ने ऐसे करना चाहिए, भाई ने ऐसे करना चाहिए, सास ससुर ने ऐसे करना चाहिए, वो ज़्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका बिहेवियर जो है ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप केवल अपना व्यवहार अपने नियंत्रण में रख सकते हो, है ना? आपको क्या करना चाहिए ये मैं कैसे नियंत्रण रख सकता हूँ? हाँ, प्रेरणा दे सकता हूँ, प्रेरणा आप लेंगे तो आप वैसे कुछ कर सकते हो, लेकिन फिर भी करना आपको है और आप स्वतंत्र हैं। और मुझे संतुष्ट रहना है तो मुझे वही अपेक्षा करनी चाहिए जो पूरी हो सकती है, और कहते हैं ना उसको डिसप्रोपोर्शनेट, या मराठी में कहते हैं अवाजवी, मतलब अनरीजनेबल अपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए। हमारे भक्ति का जीवन क्या समझाता है हमको? सादगी में रहना चाहिए। जस्ट बी सिंपल, इफ यू आर सिंपल देन यू कैन बी हैप्पी। इफ यू आर टू मेनी थिंग्स एक्सपेक्टिंग एक्सपेक्टेशंस, वेरी डिफिकल्ट टू बी हैप्पी। हु इज हैप्पी इन दिस वर्ल्ड? देयर इज अ ग्रेट डिसप्रोपोर्शन बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड हैप्पीनेस, समाधान और हमारी अपेक्षाएं, इसमें क्या कहते हैं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जितनी अपेक्षाएं उतना कम समाधान, जितनी कम अपेक्षाएं उतना अधिक समाधान। और सबसे ऊपर क्या है? जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, सबसे ऊंचा प्रिंसिपल है ये। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये जो अपनाते हैं ना, वो बहुत खुश रहते हैं जिंदगी में, उनकी खुशी बढ़ती जाती है उल्टा, क्योंकि राज ही तो वही है सुख का। तो एनीवे अपने गर्भवती पत्नी को संतुष्ट रखने का कर्तव्य पति का भी है। ही हैज टू अरेंज एन एटमोस्फियर विच इज कंड्यूसिव फॉर हर सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, संस्कार तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन कृष्ण कथा जो है वो इस संस्कार का एक अविभाज्य अंग है। और कृष्ण कथा से गर्भवती माता का हृदय भर देना चाहिए, टू फ्लड द हार्ट ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी विद लविंग पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा। तो कौन सी पास्ट टाइम सुनने का दिल कर रहा है आपको भी, एज पर योर चॉइस आप भी बता सकते हैं। एनी बाल लीला आपको क्या सुनना है, जय हो बाल लीला की जय हो। इति दृक्स्व लीला भीर आनंद कुंडे स्वघोषम निमाजंतम आख्यापयंतम। बाल कृष्ण भगवान ने गोकुल वासियों को अपने सुंदर मनोहर मधुर लीलाओं से आनंद के सागर में डुबो दिया। भगवान इतने सुंदर हैं, और वही भगवान जब बाल रूप में आएंगे तो कितने मनमोहक होंगे वो। हाँ, काला कलूटा बालक भी जब बाल होता है ना तो भी अट्रैक्टिव होता है, उसकी बोलने उसका उसकी उसका बोलना उसका चलना उसका व्यवहार किसी भी व्यक्ति को उसका दिल मोह लेता है। और वो सर्वाकर्षक सर्व सौंदर्य संपन्न, हाँ परमोच्च संपन्न सौंदर्य जिसका है वो अगर बाल रूप में आता है तो उसका सौंदर्य क्या कह सकते हैं। तो ये देखिए कैसा है ना, गौलोक वृंदावन धाम में भी भगवान बाल रूप में नहीं होते, दर्शन नहीं है बाल रूप का। कितने लोगों को पता था ये बात, गौलोक धाम में भगवान के बाल रूप का दर्शन नहीं है। वो केवल भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं लीला करने के लिए भौम वृंदावन में, भूमि पर जो स्थापन किया हुआ इम्पोर्टेड वृंदावन है वहां से उसको इम्पोर्ट किया उन्होंने भगवान ने, उस पर जब भगवान अवतार लेते हैं तो ही बालक बनकर आते हैं। आप में से कितने लोगों को यशोदा मैया के गर्भधारणा की कथा मालूम है, एनीवन नोज? हाँ, लेकिन और किसी को पता है? तो वहीं से शुरू करते हैं। तो यशोदा मैया और नंद महाराज बहुत देर से बालक नहीं हुआ था उनको, कितना समय हमारे पास, जब तक भूख की आग ज्वाला बनकर ना तड़पाए तब तक बोलते रहिए, और कब किसकी भड़केगी किसी को पता नहीं है, कब किस तरह किसकी ज्वाला भड़केगी कोई नहीं कह सकता। हा हा, हा, हा। तो नंद महाराज और यशोदा मई बहुत दिनों से उनको बालक नहीं हुआ था, कहते 85 साल की उम्र हो गई उनकी। तो रोज सवेरे प्रभाती जाते थे नदी स्नान करने के लिए जमुना जी, थोड़ा देर हो गई उनको, जब देर से जा रहे थे तो सारे ब्राह्मण जितने भी थे अपने अपने कुटिया के बाहर प्रभाती कर रहे थे। बहुत सुंदर शब्द है प्रभाती, मतलब क्या, मॉर्निंग ड्यूटीज, प्रभाती यानी दातून करना जो भी है, स्नान करना, उस प्रकार के कार्य हो रहे थे, और सब एक ही साथ में अपने अपने घर के बाहर प्रभाती कर रहे थे। नंद बाबा ने सबको कहा दंडोत महाराज जी दंडोत, तो सबने ना एक मुख से उनको आशीर्वाद दे दिया, नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा हंस पड़े, अरे अभी 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 कोई उम्र है पुत्रवान होने की। तो ब्राह्मणों ने कहा कि उन्हें कहा ऐसे कैसे आशीर्वाद दिया आपने, वो कहते हैं जो सोच समझ के होता है ना आशीर्वाद, मतलब तो फॉर्मल, अभी भाई आ गए आप सामने मांग रहे हो कुछ, अभी क्या बोलूं इसको, ठीक है अष्ट पुत्रवती भव समझो ऐसे बोल दिया, तो एक होता है ना फॉर्मल आशीर्वाद हो गया। वो कहते हैं कि ऐसा क्या कहते हैं उसको, कंपोज्ड आशीर्वाद है ना, कंपोज्ड मतलब जो बनाया गया है उसको, वो पूरा हुआ नहीं हुआ तो भी उसका कोई गारंटी नहीं होता है। तो ब्राह्मण वृंद कहते हैं कि ये ऐसा आशीर्वाद नहीं था, ये बिना प्लानिंग के अपने आप प्रकट हो गया है हमारे मुख से, और हम भी आश्चर्यचकित हैं कि ऐसे कैसे आशीर्वाद दिया हमने। अभी देखो सब ब्राह्मणों ने एक मुख से एक वाक्य से आशीर्वाद तो दिया, लेकिन मन में उनके ऐसे धक धुक हो रही कि भाई अभी हमने बोल तो दिया, अभी क्या होगा, क्या अगर हमारा आशीर्वाद सत्य नहीं हुआ तो वो लोग ब्राह्मणों के वचनों पर विश्वास खो बैठेंगे। नंद बाबा हंस पड़े और चले गए नंद स्नान करने के लिए यमुना जी में। तो ये सब ब्राह्मण फटाफट प्रभाती पूर्ण करके भाग गए अपने गुरु जी के पास, शांडिल्य मुनि के पास। ओके महाराज जी, आज सुबह सुबह ऐसी घटना हुई है कि हमने ऐसे बोल दिया है जो नामुमकिन है। तो उन्होंने कहा इसको सच कैसे किया जाए कि हम जैसे ब्राह्मणों के शब्दों पर लोगों का विश्वास बना रहे, क्या करें उसके लिए। उन्होंने कहा कि 18 कोटी गोपाल मंत्र वाला यज्ञ करना। श्री गोपाल को स्मरण करते हुए गौलोक धाम गोपाल जी जो है श्री हरि, श्री कृष्ण भगवान, परम भगवान, परात्पर भगवान गोलोकेश्वर, उनके लिए गोपाल आहुति 18 कोटी अर्पण करना यज्ञ के रूप में। तो सब लोगों ने तुरंत यज्ञ की व्यवस्था की और 18 कोटी गोपाल आहुति अर्पण की। जब आखिरी आहुति अर्पण हुई और यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तो समय एक नील तेज प्रकट हुआ यज्ञ कुंड से, बहुत सुंदर, और वो नील तेज आकाश में गया और एक बालक का रूप धारण किया उसने। फिर वो नील तेज आया नंद बाबा की गोद में। नंद बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े सुंदर हो गए, बड़े तेजस्वी हो गए वो। फिर वो तेज, बालक रूप तेज, उनकी गोद से मैया के हृदय में गया, यशोदा के हृदय से उनके गोद में स्थापन हो गया वो। और उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी, यानी कि दामोदर मास का आखिरी दिन, जिस दिन हम तुलसी विवाह करते हैं, उसी दिन यशोदा मई गर्भवती हो गई। अभी आप कार्तिक पूर्णिमा से जन्माष्टमी तक कितने दिन है वो गिन लीजिए, फिर आपको पता चलेगा इट वॉज अ फुल टर्म प्रेगनेंसी। इस तरह से यहाँ पर नंद बाबा के माध्यम से यशोदा मई गर्भवती हो गई। और वहाँ पर ये जो आए इनके गर्भ में वो कौन थे, वृंदावन कृष्ण थे, वो ऐश्वर्य संपन्न देवकी कृष्ण नहीं थे, वैकुंठ वाले कृष्ण नहीं थे। क्या कारण है उसका, क्योंकि इनके यहां पर कहां ऐश्वर्य भाव था, केवल माधुर्य भाव है, पूरे माधुर्य से भरे हुए हैं संपृक्त। तो उनके भाव के अनुसार माधुर्य कृष्ण गर्भ में प्रकट हुए। और देवकी वसुदेव भी बहुत वात्सल्य करते हैं भगवान के ऊपर, लेकिन उनके वात्सल्य में ऐश्वर्य का ज्ञान भी है, ये भगवान है, भगवान ही हमारे गोद में आने चाहिए, ऐसी प्रार्थना की थी उन्होंने, तपस्या की थी, वरदान मांगा था। तो देवकी के गर्भ में जो आए वो ऐश्वर्य कृष्ण थे, वैकुंठ कृष्ण। और वो जब आए तो कैसे, वो पूरे ऐश्वर्य के साथ प्रकट हो गए, है ना, चार भुजा, शंख चक्र पद्म गदा, फिर पूरा ऐश्वर्य, पूरे यहां तक घुंघराले बाल, वैदुर्य मणि से बना हुआ मुकुट, वैजयंती माला, कौस्तुभ मणि, पूरे ऐश्वर्य के साथ प्रकट हुए। पूरी जो जेल थी वो तेज से भर गई, कंस की जेल। और भगवान भी ये समझ बूझ कर बता रहे हैं कि मैं वही हूं, जब तुम प्रश्नी थी और वो तुम्हारे पिता पति देव सुतपा थे तब मैं प्रश्नी गर्भ के रूप में आया था, उसके बाद तुम अदिति बनी और वो कश्यप मुनि बने तब मैं वामन के रूप में आया था, अब तुम देवकी वसुदेव के रूप में आए हो तब मैं कृष्ण बनकर आपके सामने आया हूं। अपने ऐश्वर्य का परिचय भी दे रहे पूरा। तो कहते हैं वसुदेव का जो वात्सल्य था उससे कई गुना अधिक वात्सल्य देवकी का था। तो वसुदेव को इतना भय था कंस का कि क्या करेगा, वो आठवीं जो संतान मेरी गर्भवती माता अपनी पत्नी के गर्भ को क्या कष्ट देगा, वो बहुत चिंता थी उसको। लेकिन कहते हैं उसको जैसे वसुदेव जी को चतुर्भुज कृष्ण का दर्शन हुआ सारा भय नष्ट हो गया उनका, एकदम आनंद का अनुभव किया। लेकिन देवकी को फिर भी थोड़ा बहुत भय अभी तक था मन में, और वो विनती करती रही कि आप बालक रूप में आइए, मैं कहीं छुपा लूं आपको कंस के आने के पहले। तो फिर देवकी के वजह से वो दो भुजा वाले बालक रेंगते हुए बने और देवकी ने उनको एक बार स्तनपान कराया। तो इस तरह से दोनों का दो जगह जन्म हुआ। और वसुदेव जी जब आदेश प्राप्त किए भगवान से, भगवान ने उनको आश्वस्त किया, भय से मुक्त करने का प्रयास किया, मैं हूँ चिंता नहीं करना, सब कुछ किया। फिर जब बालक रूप में रूपांतर होने का समय आया तो उन्होंने वसुदेव जी को आदेश दिया कि मुझे आप लेकर गोकुल जाना। फिर भगवान को वसुदेव जी गोकुल लेके गए हैं, और गोकुल जाते हुए जब गोकुल जा रहे थे तो एक और अद्भुत बात हुई कि जब कृष्ण भगवान जब गर्भ में प्रवेश किए यशोदा के, उसी समय भगवान की पुरानी इच्छा के अनुसार माया देवी भी है, योग माया देवी, वो भी उनके गर्भ में प्रवेश करी। तो यशोदा देवी है ट्विन प्रेगनेंसी, योग माया देवी साक्षात भगवान के वरदान के रूप में, क्योंकि योग माया देवी ने भगवान के आदेश के अनुसार संकर्षण जो ऐश्वर्य बलराम जी है उसे माधुर्य बलराम से एक स्वरूप कराया था उन्होंने। सातवें गर्भ जो था उसमें देवकी में जो आए थे वो अनंत शेष संकर्षण भगवान थे, वैकुंठ वाले। तो उनको संकर्षण करके उन्होंने रोहिणी के गर्भ में जो मूल माधुर्य बलराम जी विराजमान थे उनमें एक जीव कराया। उस सेवा के लिए भगवान ने उनको वरदान दिया, जब तुम ये सेवा करोगी मेरे लिए तब तुम मेरी बहन बन जाओगी, मेरे ही साथ में गर्भ में रहोगी और आपका गौरव होगा। बहुत सारे नाम बताए, शारदा, चंडिका, भवानी, पार्वती, इस रूप में आपका पृथ्वी पर सम्मान किया जाएगा, पूजन किया जाएगा। तो जब कंस के कारागृह में भगवान का जन्म हुआ तो रोहिणी नक्षत्र दूसरे चरण में था, और जब यशोदा ने जन्म दिया दो बालकों को तो रोहिणी नक्षत्र तृतीय चरण में था। थोड़ा डिफरेंस है, सेम चरण नक्षत्र है लेकिन द्वितीय चरण में कंस के कारागृह में ऐश्वर्य कृष्ण जन्म लिए और तृतीय चरण में योग माया और यशोदा कृष्ण ने जन्म लिया। और भगवान की इच्छा से योग माया के प्रभाव से जब ये जन्म हुआ, दोनों बालक जन्म लिए, तो यशोदा की ग्लानि आ गई और सब लोग योग माया के प्रभाव से सो गए। सेवा करने वाले दाई जितने भी थे, गोपी, सब सो गए। किसी को पता नहीं क्या हुआ, लड़का हुआ, लड़की हुई कि दोनों हुए, भगवान की योजना थी वो। तो वसुदेव जी जमुना जी को पार करते हुए जब गोकुल पहुंचे तो सब गोकुल में पूरी तरह से शांति, निद्रा के प्रभाव में सब लोग थे। तो भगवान की इच्छा के अनुसार जब उन्होंने उस अपने हाथ वाले बालक को वहां रखा तो वो बालक यशोदा कर कृष्ण में विलीन हो गया। दो कृष्ण थे ना, एक कृष्ण वसुदेव के हाथ में थे, एक यशोदा की गोद में थे। तो जैसे उन्हें रखा वो बालक जो है वो यशोदा कृष्ण में विलीन हो गया, और उस कन्या को फिर वसुदेव ने लिया है और फिर वो वापस मथुरा गए। तो अगले दिन जब उस समय क्या हुआ, जिस समय ही हुआ कि वसुदेव जी आके चले गए, रवि यशोदा के गोद में एक ही बालक है, उस समय नंद बाबा की बहन को, वो नंद भवन में नहीं थी, वो अपने घर पे थी, तो उस समय नंद बाबा की बहन को एक स्वप्न आया कि उनकी भाभी को पुत्र हुआ है, ऐसे दर्शन हुआ साक्षात स्वप्न में। तो जो ऐसे उठी वो आनंद के भाव से और भागी नंद भवन में और सबको जगाने लगे, उठो उठो क्या कर रहे हो नंद, उठो क्या कर रहे हो, यशोदा माई नंद बाबा को पुत्र हुआ है। तब यशोदा माई सब जग गए, नंद बाबा भी जग गए, देखा तो उनके गोद में पुत्र था। तो फिर सब लोग आए, पूरे हवा की तरह खबर फैल गई पूरे गोकुल में कि नंद बाबा को बालक हुआ है, यशोदा माई को बालक हुआ है। सब लोग सज धज के अलंकार पहन के भागे सब लोग नंद भवन की ओर। सुंदर वर्णन दिया गोपाल चंपू में, जैसे इतनी सारी महिलाएं थी गोपी, अपने अपने सर्वश्रेष्ठ श्रृंगारों को, अलंकारों को पहनकर, सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहनकर, फूलों का आभूषण पहनकर भागने लगी, और सबके हाथ में कुछ ना कुछ उपहार थे। तो सभी गोपियां भागने लगी। कहते हैं कि इतना आनंद था ब्रज में उस समय कि जितने जितने बालों पर फूल लगे हुए थे वो सब इनके जल्दी जल्दी चलने से, गति की वजह से जमीन पर गिर रहे थे, तो पूरे रास्ते सब इनके फूलों से भर गए थे, सुगंधित फूलों से। ऊपर से देवता लोग आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे थे, मथुरा पर भी कर रहे थे और ब्रज में भी कर रहे थे। तो नंद बाबा ने जब यशोदा मैया ने देखा कि सब आ रहे हैं, तो उनको लगा अरे मेरी बलाला को नजर लग जाएगी, तो वो बोले मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी, वो सब ऐसे पूरा छुपा दिया अपने आंचल में उसको। और गोपियां भाग भाग के आ रही थी, अपने हाथ में उपहार लेकर, बड़े बड़े परातों में, सुपड़े में लेकर ऐसे आ रही थी भाग भाग के। तो भगवान को लगा, रही मेरे सब प्रेमी भक्त लोग आ रहे हैं और मेरे मैया मुझे छुपा रही है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसे पैर अपने वो आंचल से बाहर निकाल दी। ऐसे सुंदर वर्णन दिया है कि सारी गोपियां उनके चरणों में गिरी हैं, और जो वो चरणों में गिरी रही थी वो चरणों को, अरे कैसे खुल गया, इस विचार में मैया थी। तो भगवान ने अपना शीश भी निकाल लिया वहां से और अपने सुंदर मुख कमल का सबको दर्शन दिया। तो उस समय जब चरणों का दर्शन कर रहे सब गोपियां, तो ये कह रहे मैंने दर्शन कराऊंगी, आपकी नजर लग जाएगी, मैंने दर्शन नहीं कराऊंगी, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। तो गोपियां कह रही, अरे अरे हमारे हमारे जो हमने लाए हैं थालियां भर के, देखो तो हमने क्या लाया है, हमने नजर उतारने का सामान लाया है और आप नजर 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 लगाने की बात कर रही हो। देख सबने खोल के दिखाया, तो सबके थालियों में, सुपड़े में वो ऐसे ऐसे व्यंजन थे, हल्दी, अक्षत, वो बहुत सारी चीज़ें होती है ना, राई होते, लौन होते, वो सारे राई लौन से भरे हुए उनकी थालियाँ थी। और सबने लाला की नज़र उतारी और किसी ने लाला से कुछ नहीं मांगा। वो कहते तुम क्या कहते, आयुष्मान भव, सशक्त भव, कीर्तिमान भव, ब्रज रक्षक भव, ऐसे उन्होंने आशीर्वाद दिए भर भर के। तो ये बात बहुत जरूरी है कि जो हम लोग भगवान से आके मांगते हैं ना, जब भी आते हैं तो क्या बड़ी लिस्ट होती है हमारे पास, उसके लिए कोई टाइप करने की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए सेव करने की जरूरत नहीं होती है, उसका प्रिंटआउट निकालने की जरूरत नहीं होती है, वो हमेशा तैयार रहती है, ऐसा दिन दिन बढ़ते जाए ऐसी लिस्ट रहती है वो, है ना, वो भी एक स्पिरिचुअली है वो, हाँ बढ़ने वाला लिस्ट, इतनी बड़ी इच्छाएं हमारी होती है। भगवान तो बाजू में रह गए, हमारी इच्छाएं अप्लीकेशन खत्म ही नहीं होता है, लेकिन ब्रज में ऐसा नहीं होता है। सही ब्रज भाव जो है ना, ब्रज उपासना जिसको कहते हैं, उसमें भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं। और ब्रजवासी भी कहते हैं हमारे लाला से कुछ मांगना नहीं, उसको देना है तो आशीर्वाद देना, कुछ देके जाना, या तो भेंट वस्तु देना, या तो प्रेम देना, या तो आशीर्वाद देना, लेकिन मांगना नहीं कुछ उनसे। ऐसे भी कई मंदिर हैं आज के, बहुत प्राचीन मंदिर हैं जो भगवान से गेट पर ही बैठा रहता है पंडा, बोलते हैं हमारे लाला से मांगना नहीं कुछ, देना है तो कुछ देके जाना, मांगना नहीं बिल्कुल, नहीं तो अंदर मत आना। तो ब्रजवासी ऐसा व्यक्ति है जो ठाकुर को भी देता है, उसके लिए कुछ अपेक्षा नहीं करता कि मुझे कुछ मिलेगा, और बदले में ठाकुर जी प्रेम देते हैं, सुरक्षा देते हैं, अपना बना लेते हैं। तो ऐसे सारे ब्रजवासियों ने, किसी ने भी भगवान से कुछ नहीं मांगा, सबने आशीर्वाद दिया, सबने टीटा लगाया, सबने मंत्रोच्चारण किया, ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया, सबने दिया भगवान को। और नंद बाबा ने भी दिया सबको, सात पर्वत बनाए नंद बाबा ने, सात पर्वत सभी धान्यों के, और अनंत क्या कहते हैं उसको, नवरत्नों से उसके शिखर सजाए, उस पर्वतों के शिखर जो है वो रत्नों से सजाए उन्होंने, और वे सातों पर्वत जो है वो दान कर दिए ब्राह्मणों को। और अभी आप जानते हैं ना, मैंने पहले बताया कि भगवान के बाल रूप का दर्शन उधर नहीं होता है गौलोक में, वैकुंठ में भी नहीं होता है, गौलोक में भी नहीं होता है। तो सारे देवता लोग आ रहे हैं नीचे, वहां पर कोई ईमेल अनाउंसमेंट, कोई ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, हृदय में सब क्या कहते हैं उसको कम्युनिकेशन होता है। जैसे परीक्षित महाराज को शाप मिला तो किसने किसको अनाउंसमेंट किया क्या, कुछ ही क्षणों में सब पूरे विश्व के 14 भुवनों के ऋषि वहां प्रकट हो गए। कितना एडवांस टेक्नोलॉजी होगा सोचिए आप, केवल हृदय के भाव से ही उनको सबको संपर्क हो गया सबका, सब बड़े तीव्र ध्यान में बैठे हुए ऋषि मुनि जो थे उनका ध्यान भंग गया, वो तत्क्षण वहां प्रकट हो गए, वो कहां कहां से प्रकट हो गए, वो हजारों लाखों संत प्रकट हो गए जब गंगा किनारे, परीक्षित जी का अभी क्या होगा देखने के लिए। उसी तरह से जब कृष्ण का जन्म हुआ तो सारे देवता पुष्प वर्षा तो कर ही रहे थे, फिर जब नंदोत्सव शुरू हुआ तो भेष बदल बदल कर वहां पर आ रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नंद बाबा ने भी लुटा दिया, इतना लुटाया तो लोग भी लेने वाले, वो जो लुटाने वाले नंद बाबा, उनका भाव इतना तीव्र था कि लेने वाले ले रहे हैं लेकिन उनका भाव भी उनको प्रभावित कर रहा है। यू कैन इमेजिन, यू आर टेकिंग, ही इज गिविंग यू आर टेकिंग, बट मोर देन टेकिंग यू आर टेकिंग हिज भाव ऑफ गिविंग। तो इसलिए जितने लोगों ने दान लिया नंद बाबा से, उन्होंने कुछ भी अपने पास रखा नहीं, वो सबको बांट दिया उन्होंने। कैसे अद्भुत स्थिति है देखो। मराठी में हमारे ना एक सुंदर कहावत है, मतलब कविता है, देणाराने देत जावे किणाराने घेत जावे। देने वाले को देते रहना चाहिए, लेने वाले को रहते रहना चाहिए। एक दिवस घेणाराने देणारा से हाथ घ्यावे। मतलब क्या, ऐसे लेते लेते एक दिन आपको देने वाले की दानत है, दातृत्व है, उसी को लेना चाहिए। केवल लेते रहना चाहिए, देने वाले को दान धर्म करने का जो प्रवृत्ति है उसको एक दिन स्वीकार करना चाहिए। तो ये तो इनका दातृत्व इतना श्रेष्ठ है, इतना तीव्र है कि लेने वाले लेते समय भी दातृत्व अपने आप उसके गोद में प्रवेश कर रहा है, तो वो भी सबको दे रहे हैं। राधा रानी के जन्म में भी ऐसा ही हुआ था। ऋषभानु महाराज खोलते जा रहे थे एक एक भंडार, एक 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 रत्न के भंडार खोलते जा रहे थे, और लोग एक एक भंडार का सामुद जो साहित्य है झोली भरकर जा रहे थे, तब सुन रहे कि दूसरा खोल दिया तो वो वहीं छोड़ दिया और दूसरे के लिए भागे, दूसरा लिया झोली भर के, तब मालूम पड़ा तीसरा खुला हुआ है भंडार तो वो छोड़ दिया और तीसरे के लिए भागे। मतलब पूरे ब्रज में सब जगह अलंकार ही अलंकार, रत्नों से जमीन रस्ता खेत सब भर गए थे, इतने श्री जी का ऐश्वर्य ब्रज में प्रकट हुआ था। तो देवता लोग प्रकट हुए कृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन भेष बदल के आए सब लोग, ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर आए। तो कहते हैं कि पार्वती देवी भी आई थी और अपने छोटे गणेश को लेकर आई थी, है ना, और नंद बाबा ना गाय बैल हाथी भैंस बकरी जो भी उनके पास अश्व जो भी है सब लुटा रहे थे दान में। तो उन्होंने ना पार्वती जी ने अपने गणेश जी को गोद में रखा था, कहीं हाथी समझ के इसको भी दान दिया जाए तो, ऐसा रखा गोद में। और उनके पतिदेव भी आए थे अपने व्हीकल में नंद बाबा के, अपने नंदी बैल पर। तो वो ना नंदी बैल के पूछ पकड़ के खड़े थे, कह भाई ये बैल भी दान दिया जाए तो हमारा वाहन तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, वो भी खड़े हैं। ऐसे अद्भुत चमत्कार हुए। वो कहते हैं कि तो क्या हुआ कि ब्रजवासी लोग इतने आनंद में थे उस समय, इतने आनंद में थे, तो नाचने लगे गाने लगे उल्टा रहे सब यहाँ वहाँ से। तो उन्होंने ना मक्खन के गोले बनाए और दूध दही सब फेंकने लगे, तो मक्खन के गोले के वर्षाव होने से वो जो मोरी थी ना, मोरी नंद बाबा की, पता है मोरी क्या होता है, ड्रेनेज, नानी ट्रैप बोलते ना उसको, तो जितने भी ऐसे ट्रैप्स थे ना वो सब गोले अटक गए वहाँ पर जाके, और फिर दूध दही उस पर फेंका गया तो वो पूरा चौकअप हो गया ना पूरा। तो कहते हैं कि जैसे हरे कृष्णा, तो मानो क्षीर सागर निर्माण हो गया वहां पर नंद बाबा के आंगन में, पूरा क्षीर सागर इकट्ठा हो गया। तो ब्रजवासी बड़े आनंद हो गए कि सब मोरिया ब्लॉक हो गई, क्षीर सागर इकट्ठा हो गया। तो उन्होंने कहा नंद बाबा आपको तो नाचना ही चाहिए, आज तो लाला का जन्म भयो है। तो कहते मुझे नाचना तो नहीं आता है, नाचना पड़ेगा आपको। उन्होंने पीताम्बर वस्त्र लिया और नंद बाबा को बीच में खड़ा कर दिया और एक चक्र उनके पेट में घुमाया, समझे ना, यहाँ से ऐसे लाया यहाँ से घुमाया और वो एक वस्त्र का एंड वहां पर दिया। तो वही अभी वस्त्र का जो एक एंड है वो उस तरफ के ब्रजवासियों के हाथ में है और वस्त्र का एक एंड इस यहाँ के ब्रजवासियों के हाथ में है। उन्होंने उसको खींचना शुरू कर दिया, नंद बाबा फिर ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने लगे मंदार पर्वत की तरह, और मानो समुद्र का मंथन हो रहा है। इस प्रकार का अद्भुत समुद्र मंथन नंद बाबा के आंगन में हुआ, नंद बाबा स्वयं वहां पर मंदार पर्वत बनकर। तो संतगण बताते हैं कि वो समुद्र मंथन में पहले विष पैदा हुआ था, ये समुद्र मंथन होने के पहले ही अमृत लाला के रूप में प्रकट हो गया था, कोई विष विष प्रकट नहीं हुआ। उसमें 14 रत्न प्रकट हुए मंथन करने के बाद, ये मंथन होने के पहले ही सर्वोच्च रत्न प्रकट हो गया था। इस तरह से कहते हैं कि 6 महीने तक कृष्ण भगवान का जन्मदिन उत्सव चलता रहा, 6 months। किसी को समझा ही नहीं कब रात हो रही है कब दिन हो रहा है, कब रात हो रही है कब दिन हो रहा है। 6 महीने के अंत में जब सूर्यास्त का भान ब्रजवासियों को हुआ, उस समय सब ब्रजवासियों ने मिलकर ब्रह्मा जी को खूब गाली दी। अरे कैसे ब्रह्मा जी हैं, हाँ अरे ब्रह्मा तो बूढ़ो भयो है, अभी तो उम्र हो गई उसकी, हाँ और वो कैसा है ना कि उम्र होने के बाद थोड़ा दिमाग थोड़ा हल्का हो जाए, कुछ थोड़ा सा इंटेलिजेंस कम हो जाता है, वैसे ही ब्रह्मा की हालत हो गई। देखो देखो आज के दिन कम से कम सूर्यास्त इतना जल्दी नहीं करना चाहिए था, जबकि 6 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, उनको लगा कि आज ही जन्मदिन मना रहे हैं और आज का ही सूर्यास्त हो रहा है। बोले कम से कम आज तो सूर्यास्त जल्दी नहीं करना चाहिए था, इतनी तो अकल होनी चाहिए थी। फिर क्या हुआ, सूर्यास्त हो गया, फिर सब लोग चले गए अपने अपने घर। इसके बीच में ना एक बात हो गई कि भगवान का षष्ठी पूजन रह गया, जन्मोत्सव ही इतना दिन चला तो किसी को याद ही नहीं आया षष्ठी पूजन करना है। तो जब तृणावर्त को मारने के बाद भगवान का 1 वर्ष का जन्मघाट बनाने का समय आया, तो जन्मघाट बनाने का समय आया तो उत्सव मनाने की योजना शुरू की, तब यशोदा माई को याद आई, अरे षष्ठी पूजन तो हुआ नहीं, पहली वर्षगांठ कैसे मनाएंगे, हाउ टू सेलिब्रेट फर्स्ट बर्थडे विदाउट सेलिब्रेटिंग द षष्ठी पूजन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहते हैं कि भाग भाग के जल्दी जल्दी में यशोदा माई ने छठीकरा में भगवान का षष्ठी पूजन किया है 1 साल होने के पहले, इसलिए उस जगह का नाम पड़ा है छठीकरा। अभी छठीकरा का विषय आया है तो छठीकरा के बारे में बता देते हैं आपको। छठीकरा वो जगह है जहां पर भगवान का षष्ठी पूजन हुआ। उस जगह पर एक बार कृष्ण भगवान बालक रूप में अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे, तो उन्होंने अचानक श्रीदामा को कहा कि आप, अरे श्रीदामा आप गरुड़ बन जाओ। तो श्रीदामा ने हाँ बोलने के पहले श्रीदामा जी गरुड़ बन गए, एक्चुअल पक्षी बन गए गरुड़। और गरुड़ बनते ही भगवान ने 12 भुजाओं वाला वैकुंठ का स्वरूप, जो वैकुंठ में नहीं होता है एक्चुअली, कहाँ पर 12 भुज का स्वरूप होता है, ऐसा अद्भुत स्वरूप भगवान ने अपना ले लिया और 12 भुजा वाले भगवान तुरंत गरुड़ पर विराजमान हो गए। अभी गरुड़ का होना ये वैकुंठ होने का एक प्रमाण है ना, वेर गरुड़ जो गरुड़ जी कम्स वेर इज वैकुंठ। जैसे ही श्रीदामा गरुड़ भाव में आए, गरुड़ बने, तो वैकुंठ प्रकट हो गया वहां पर। तो वैकुंठ प्रथम प्रकट होते ही लक्ष्मी जी प्रकट हो गई, रुक्मिणी सत्यभामा प्रकट हो गई, और पूरा वैकुंठ का ऐश्वर्य संपन्न हो गया वहां पर। तो वो मंदिर है वहां पर गरुड़ गोविंद जी का, जो बड़ा प्राचीन और ब्रजवासियों के लिए बहुत प्रिय मंदिर है, जहां पर भगवान ने कुछ समय के लिए अपना वैकुंठ का ऐश्वर्य दिखाया। अभी ये जो लीला और एक हुई है वहां पर चटिकरा, आप परे प्यान से सुनना, नींद आ गए तो खड़े हो जाने, लेकिन लीला बरूर एकाग्र होकर सुनना सब लोग, हाँ नॉट ओनली प्रेग्नेंट लेडीज, ओके। तो अभी ब्रज में बहुत आतंक होने लगा, गोकुल में हर रोज राक्षस, अभी क्या है हॉप स्किप एंड जंप, मथुरा से जमुना पार करते तुरंत गोकुल में, जिसको मारना है तो गोकुल में ही है, तो बड़ा आसान था। तो हर रोज कंस राक्षस को भेजता था। अभी क्या है ना, सुखदेव जी को इतना समय नहीं था कि वो हर रोज वाले राक्षसों का वर्णन करते रहे, तो 7 दिन में कथा समाप्त कैसे होगी। इसलिए सुखदेव जी ने, आचार्य बताते हैं कि उन्होंने गिने चुने राक्षसों का ही वर्णन किया है बड़े बड़े। तो हम लोग क्या सुनते हैं, पुतना 6 दिन पे, 3 महीने पे शक्टासुर, 1 साल पे तृणावर्त। लेकिन जब ये 3 साल पूरे हुए तो बहुत नंद बाबा सब परेशान हो गए। रोज वो मीटिंग क्या करते थे, 84 खंबा उनकी मीटिंग स्थली है वो, वहाँ पर रोज मिलते थे और चर्चा करते थे, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, लाला ने क्या किया, ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो दिन बड़ी गंभीर मीटिंग हुई कि अभी यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। उपनंद बाबा ने वो मीटिंग बुलाई थी और सबको समझाया कि यहाँ पर अभी रहना ठीक नहीं है, यहाँ पर तो इतना आतंक है कि रोज के लाला के ऊपर कितने हमले हो रहे हैं, उनको यहाँ से जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि यहाँ से दूर हमारे ही जगह पर वृंदावन नाम का सर्वश्रेष्ठ धाम है, तो वहाँ पर भागवत में वृंदावन का गौरव वर्णन किया गया है, कितना श्रेष्ठ धाम है। एक वाक्य बताता हूँ आपको मैं वृंदावन के बारे में, जो सुखदेव जी बताते हैं कि श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी दोनों भैया सभी को आनंद देने वाले हैं, सबको आनंद देते हैं, सबके हृदय में आनंद भर देते हैं, लेकिन जो सबको हृदय में आनंद देने वाले हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उन सबको आनंद देने वाले श्री कृष्ण बलराम दोनों को वृंदावन धाम आनंद देता है। ये वृंदावन धाम की सबसे बड़ी महती है, जो सबको आनंद देने वाले आनंद घन आनंद सागर है, उनको भी वो आनंद देते हैं। ऐसे धाम का वर्णन किया जा रहा है, वहां पर अभी हमको चलना है। तो तुरंत उपरंत बाबा के सलाह से नंद बाबा सारे गोकुल का राज्य समेट लेते हैं, पैकिंग कर लेते हैं बैलगाड़ियों में, कुछ पैदल चल रहे हैं, कुछ गोद में है, कुछ कंधे पर है, बाकी बैलगाड़ी में सब चल रहे हैं, ऐसा पूरा साम्राज्य, पूरा जो राज्य है वो चल रहा है। तो वो लोग जब आते हैं चलते हुए, उसका आप पढ़ेंगे गोपाल चंपू, तो उसका बहुत सुंदर वर्णन दिया है। तो जब वो छठीकरा पहुंचते हैं तो अचानक बालक रोने लगता है। अभी देखिए, सबका केंद्र स्थान कौन है ब्रज में? वो है श्री कृष्ण भगवान। और जब तक आनंद में है सब कुछ आनंद में है, जब रोने लगता है तो पूरा ब्रज जो है ना वो रुक जाता है। होल्ड द वृंदावन भूमि, ब्रज भूमि स्टॉप्स, एवरीथिंग जस्ट स्टॉप्स, टिल द चाइल्ड स्टॉप्स क्राइंग, एवरीथिंग जस्ट स्टॉप्स। तो उस प्रकार से जब बालक रोने लगता है तो सारा जो चल रहे है ना समाज वो रुक जाता है। बैल भी रुक के मुंडने लगते हैं, गाय रुक कर मुंडने लगती है, सारे जानवर मुड़कर देखने लगते हैं क्या हुआ लाला को। बड़ी बूढ़ी, छोटी सी बड़ी, शादीशुदा, अविवाहित, बड़ी बड़ी बूढ़ी, जितनी भी गोपियाँ थी सब रुक गई। सब लोग सोच रहे क्या करें, लाला को रोना कैसे रुकवाएं। तो सब लोग आके एक एक उपाय बता, अरे लाला ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, तो वो रोने लगता है। थोड़ा मैंने मिस किया कथा, मैं आपको दोबारा बताता हूँ क्या हुआ। कि अभी जा रही है कारवां, जा रहे हैं है ना, तो कन्हैया जी माता की गोद में बैठे हैं, बलराम जी रोहिणी की गोद में बैठे हैं, बड़ी मखमल की सुंदर सुंदर अलंकृत नवरत्नों से भरे हुए तकिया है, और क्या कहते हैं उसको, बोलस्टर्स हैं, उसमें विराजमान है गोद में माता के। तो एक 105 साल की बुढ़िया गोपी वो सोच रही है कि कितना अच्छा होता अगर वो मेरे गोद में होता। ईर्ष्या से नहीं, जलन से नहीं, सहज भावना है मन में। और भगवान बालक रूप में हो तो क्या हुआ, सबके मन की बात जानते हैं वो, सबके मन की बात जानते हैं। तो इसकी बुढ़िया की बात भी जान गए वो, कि वो सोच रहे हैं कि अगर इतनी यात्रा करनी मेरे गोद में करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। तो भगवान अभी ठान लेते हैं कि अभी इसकी इच्छा मुझे पूरी करनी है। तो अपने मैया से पूछने लगते हैं वो कौन है, तो मैया कहती है वो मोर है। फिर वो उसके बाजू में कौन है, वो तो मोरनी है। वो मोरनी कौन है, तो मोर की बहू है। फिर वो तो वो कौन है, बोलते वो तोता है। उसके बाजू में कौन है, मैना है। मैना कौन है, तोता की बीवी। ऐसे ना ठाकुर जी सभी जितनी भी जोड़ियां हैं सभी के बारे में पूछते हैं, यही पूछ रहे हैं वो कौन है, यो कौन है, वो उसके कौन लगती है। तो सारे प्रकार के प्राणी पक्षियों को पूछने के बाद पूछते हैं कि मेरी बीवी कहाँ है। सबकी बीवी है, देखो पंछी की भी बीवी है, जानवर की भी बीवी है, हर एक जीव की बीवी है, मुझे क्यों बीवी नहीं है। और तभी वो रोना शुरू कर देते हैं एक्चुअली, और तब सारा कारवां रुक जाता है। और तब आके समझा रहे हैं गोपियां उनका, अरे लाला तू तो छोटो है, अभी तो छोटा सा है, तो बीवी तो बड़े होने के बाद में आती है। देखो सब लोग बड़े है ना, नहीं वो भी छोटे है, कहता हूँ इतना सा पंक्षी है उसकी भी बीवी है, मैं तो उससे भी बड़ा हूँ। नहीं नहीं तुम्हें बड़ा होना पड़ेगा, नंद बाबा जैसे जो ग्वाल बाल है वैसे बड़ा होना पड़ेगा, फिर आपकी बीवी आएगी। नहीं मुझे अभी के अभी बीवी चाहिए, अभी के अभी चाहिए। फिर सारी गोपी आती है, अलग अलग ग्रुप में आती है, समझाती है, वो समझने को तैयार नहीं है, अभी क्या करें। सारी गोपियां फिर यशोदा से मीटिंग करती हैं, अभी क्या करें, इसको रोते हुए चलाना मुश्किल है, हम लोग चल ही नहीं पाएंगे, हमारे पैर ही नहीं आगे बढ़ रहे। तो फिर वो मीटिंग करते हैं और निर्णय लेते हैं, एक काम करो लाला, अभी सारी गोपियां आपके सामने एक एक करके आएंगी, जो पसंद आए कर लेना बीवी अपनी। तो सारी गोपियां हर एक उम्र की, हाँ यहां से शुरू होता है उसके लायक वाली, सबको देख के सब सामने आते नॉट डिस, एक एक करके ऐसे ना जैसे वो सजदस के आते हैं ना लड़का लड़के देखने के लिए, तो एक खड़े होते हैं तो ना करके उसको आगे, फिर नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन, ऐसे करते 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 अभी बुढ़े गोपियों का समय आता है। तो बूढ़ी गोपी आ रही है, जो दादी बन चुकी हैं, जो पर दादी बन चुकी हैं, वो सब लोग एक एक करके आ रही हैं पल्लू लेकर लाला की बहू बनने के लिए। वो सबको देख के वो मुंह कर रहे हैं, और लास्ट में वो आती है 105 साल वाली जिसने इच्छा किया था। जैसे ही वो सामने आते तुरंत उसके गोद में छलांग लगाते थे, बोले यही मेरी बीवी है। सब लोग ठाका मार के हंसते हैं, हाँ सब लोग ठाका मार के हंसते हैं, बोले वाह क्या जोर की बहू बनाई आपने। क्या जोर की बहू चुनी है, हाँ? याऊ के मुड़े में दांत ना है, ताऊ के मुड़े में दांत ना है, ना तुम्हारे मुंह में दांत है ना उसके मुंह में दांत है, बड़ी बढ़िया जोड़ी है। कोई जगह लोग ऐसे कहते हैं कि लाला ने उत्तर दिया ये परफेक्ट जोड़ी है, ना मेरे मुंह में दांत है ना उसके मुंह में दांत है। उसके बाद में पूरी छटिकरा से लेके नंदगांव तक यात्रा ठाकुर जी ने उसी गोपी के गोद में बैठकर की है। जस्सी, हाँ, जो सबसे इम्पॉसिबल होता है उसको हमारे ठाकुर जी पॉसिबल कर सकते हैं, यही इसका प्रमाण है। अगर वो ठाकुर जी ने मन में नहीं लिया होता तो उसके गोद में बैठने का चांस क्या था उस माता जी का, कोई चांस नहीं था, नामुमकिन चीज थी वो। इतने हजारों गोपियां हैं, साक्षात यशोदा मैया बैठी हुई है, रोहिणी मैया बैठी हुई है, इतनी बुजुर्ग गोपियां हैं, उपनंद बाबा की प्रभावती देवी हैं और किसी की पत्नी तुंगी देवी है, इतनी सारी अष्ट नंद बाबा के जितने भाई हैं उनकी सब माताएं बैठी हैं, सब वो अधिकारी मतलब वो नंद बाबा के बड़े भाई हैं, सब छोटे भाई भी हैं, उनकी भी पत्नियां हैं, इतने क्वालिफाइड लोग गोपियां हैं, तो वो 105 साल की गरीब बुढ़िया गोपी की क्या क्या मुमकिन है उसके लिए कि उसके गोद में ठाकुर जी आ जाएं। लेकिन जब हम अपने हृदय में प्रामाणिक इच्छा करते हैं ठाकुर जी के लिए तो नामुमकिन होते हुए भी भगवान उसको पूरा कर देते हैं। ऐसी लीला रचाता है, लीला रचाते हैं भगवान कि वो एकदम आसान हो जाता है। तो जिस तरह से रोए, जिस तरह से मीटिंग करवाई उन्होंने, निर्देशित करवाई और जो निर्णय उनसे उनसे मुख से बुलवाया और जाके तुरंत कूद गए उसके गोद में और उन्होंने यात्रा की नंद बाबा तक, नंदक भवन तक। तो ऐसे ही इस तरह के आनंद देकर नंद बाबा के आंगन में, नंद भवन में भगवान ने सबको आनंद सागर में डुबो दिया। तो ऐसे भी वर्णन आते हैं, कोई बड़ी लीला नहीं है, छोटी सी लीला है, कि चंदन अगुरु और सुंदर सुंदर श्रृंगार अलंकार धारण किए हुए, सोने की सांखली में मोरपंख धारण किए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए, फूलों की माला धारण किए हुए, नन्हे नन्हे से रेंगते हुए ठाकुर दोनों कृष्ण बलराम जो है नंद बाबा के आंगन में रेंग रहे हैं। मणिमय आंगन में खेलत दो भैया, मणिमय आंगन नंद के, नंद भगवान नंद बाबा के आंगन में जो रत्नों से मणियों से बना हुआ है उसमें ये दो भाई सुंदर श्रृंगार करके रेंग रहे हैं। कभी चल रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, और सारे कहते ना सारे नंद भवन के आंगन में उनके चरणों के चिन्ह निर्माण होते जा रहे हैं। तो इतने सुंदर और तेजस्वी हैं कि देवता भी उसको देखकर लालायित हो रहे हैं कि उनको चाकर छू लें। हाँ, फिर आगे आगे जाते हैं, आगे आगे जाते हैं तो कुछ बड़े बड़े ग्वाल बाल जो है ना वो ऐसे ही देख रहे हैं अपने पहाड़ों से उधर मुंह करके। तो कृष्ण को लगता है कि ये नंद बाबा हैं, तो वो उनकी धोती पकड़ के खड़े हो जाते हैं और धोती ऐसे खींचते हैं, धोती अपने आप तो खींचती है ना वो, जैसे पकड़ के चढ़ रहे हैं। तो फिर वो जो ग्वाल बाल खड़े हैं बुजुर्ग वो मुड़ के देखते हैं, तो जब मुड़ के देखते हैं तो उनको पता चलता है कि हमारे पापा नहीं हैं, वो तुरंत भाग के लौट के आते हैं ऐसे 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 चलते हुए। और ये सब नंद बाबा, यशोदा माई, रोहिणी मैया देख रहे हैं कि हमारे दोनों बालक कैसे रेंग रहे हैं, नंद भवन की शोभा बढ़ा रहे हैं। एक बहुत महान भक्त हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा था कि मैं किसी को नहीं पूछता, मैं किसी को नहीं मानता, मैं केवल नंद बाबा की पूजा करता हूँ, क्योंकि नंद बाबा इतने महान हैं कि साक्षात गोलोकेश्वर, गोलोक को नियंत्रण करने वाले, सृष्टि को निर्माण करने वाले, त्रिगुणों को नियंत्रण करने वाले, सृष्टि का संचालन करने वाले, हर चीज के नियंत्रक, पत्ता भी उनकी इच्छा से नहीं हिलता है, ऐसे परात्पर भगवान जो है बालक बनकर इनकी गोद में, इनके आंगन में रेंग रहे हैं। भगवान से भी महान भगवान बालक बनकर उनको रिझा रहे हैं, उनको आनंद दे रहे हैं। इतना बड़ा भाग्य जो है वो मेरे लिए पूजनीय नंद बाबा, ऐसे कहते हैं। तो ऐसे रेंगते 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 एक बार क्या हुआ, वो नंद भवन के सीढ़ियों में उतरने का प्रयास करने लगे। इतने छोटे थे, इतने छोटे थे कि एक सीढ़ी पे उतरे तो दूसरी सीढ़ी इतनी बड़ी थी उनके पैरों से कि उनके पैर लटकने लगे। आप सोच सकते हैं ऐसी ऐसी सीढ़ी है और यहां पर एक सीढ़ी पर पेट के बल पर वो लटक रहे हैं, पहली सीढ़ी पर। थोड़ा पेट उनका ना माखन खा के थोड़ा सा बड़ा था तो वो बराबर उसमें उसके अटक गया और वो ऐसे 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 झूलने लगे हाँ उनके पैर जो है ना वैसे हिल रहे हैं, वो ऐसे ऐसे हो रहे हैं पेट के बल, और नारद मुनि वहां जा रहे हैं और देख रहे हैं, और वो उनके आंखों से आंसू आए, अरे देखो गोले कुशर भगवान कैसे बालक बनकर लटक रहे हैं नंद बाबा के आंगन में। कुछ समय आनंद के अश्रु आए और फिर दुख के अश्रु भी आए उनके मन में, क्या सोचकर आए, अरे देखो इतने सारे हजारों योगी हिमालय में तपस गुफा में कहां कहां बैठकर, पानी के अंदर पानी के नीचे यहां वहां बैठकर सिद्धि बल प्राप्त करके उस परमात्मा को पकड़ने का प्रयास कर रहे, ध्यान में अपने कब पकड़े उनको, मंत्र जाप कर रहे, तपस्या कर रहे, परिवार छोड़ के, धन दौलत छोड़ के, ऐहिक ऐश्वर्य छोड़ के, एकांत में जाकर कितने हजारों साल जन्मों जन्मों तक तपस्या कर रहे हैं और उनकी पकड़ में नहीं आ रहे वो, और वही देखो यहां पर लटक रहे हैं, यहां पर क्यों नहीं आ रहे देखने के लिए, उनकी करुणा के लिए रो रहे नारद मुनि जी। वही दोनों भैया जो है वो फिर गौशाला में छोड़ते हैं उनको बछड़ों के बीच में, सुंदर श्रृंगार करके जा रहे हैं, तो वहां पर भी रेंग रहे हैं, फिर रेंग का क्या होता है, बछड़ों को देखते हैं, दोनों भाई जाकर क्या करते हैं, बछड़ों की पूछ पकड़ते हैं, कृष्ण भगवान जो एक बछड़े की पूछ पकड़ते हैं और दूसरे उसरे की पूछ पकड़ते हैं, और पूछ पकड़ के ऐसे उस पे बल पे ऐसे खड़े हो रहे हैं, तो वो पूछ की जो है खींची जा रही है ना, वो थोड़ी स्थिर रहती है, वो ऐसे पकड़ के जोर से पकड़ के उसको उठ रहे, तो वो खींची जा रही है, जैसे वो पूछ जाती है खींची तो जो बछड़े होते हैं वो जरा बिथर जाते हैं एकदम ऐसे, तो भागने लगते हैं वो, और जैसे भागते हैं वो उतने गति से तो बालक नहीं भाग सकते हैं, वो तो अभी रेंग रहे हैं, वो चलने को भी नहीं आ रहा है, तो जय अभी पूछ छोड़ भी नहीं रहे हैं, पूछ पकड़े रहे हैं और पूछ बछड़े भाग रहे हैं, ये भाग नहीं सकते, तो क्या होता है वो गिर जाते हैं, पेट के बल गिर जाते हैं, और गौशाला में क्या है, गौशाला में गौमूत्र और गोबर का सुंदर मिश्रण है, इतनी सुंदर चिकनी जमीन है कि वो पेट के बल गिरते ही बछड़ों के चलते पड़ते ही उनका स्केटिंग शुरू हो जाता है पूरे गौशाला में। अभी बछड़ों को बताया चल रहा है क्या हो रहा है पीछे से, उसे वो भाग रहे हैं ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके कान ऊपर करके भाग रहे हैं, और ये उसके पीछे पकड़ के भाग रहे हैं, और रोहिणी मैया देख रही है, इतना आनंद आ रहा है उनको, इतना आनंद आ रहा है, देखो देखो सुधा माई को बुला दे, सुधा दीदी आ जाओ भाग के आ जाओ, देखो देखो क्या हो रहा है, सुधा आती आंखों में आंसू लेकर देख रही है हमारे दोनों बालक जो है कैसे बछड़ों की पूछ पकड़ कर गौशाला में रेंग रहे हैं। उसके लिए कहा गया वो इति दृक्स्व लीला भीर आनंद कुंडे स्वगोषम निमाजंतम आख्या पयंतम। इस बीच में उनके नामकरण विधि का समय आता है, वसुदेव वहां चिंतित है ना, वसुदेव को पता है कि मेरे बालक जो है वहां पर गोकुल में पल रहे हैं, तो मुझे मेरा माता पिता का कर्तव्य पूरा करना है, सब संस्कार देने, लेकिन मैं वहां पर नहीं हूं, तो वह गर्ग उन्हीं को बुलाते हैं, उनको सब रहस्य बताते हैं कि आप गोकुल में जाइए और वो हमारे बालकों का संस्कार कीजिए, तो वो जाते हैं वहां पर, लेकिन आकर बताते हैं कि हमें वसुदेव ने एक चेतावनी दी है कि आपको बड़े गुप्त रूप से नामकरण विधि करना है, क्योंकि अगर मैंने किसी बालकों का नामकरण विधि किया, ये अगर कंस को पता चलेगा तो कंस को पता चलेगा कि ये तो वसुदेव के बालक का ही करेगा ना, मतलब ये वसुदेव का बालक है, ये रहस्य जो है खुल जाएगा, तो ये बात तो गर्ग मुनि नहीं बता रहे हैं, गर्ग मुनि को यह बात वसुदेव जी ने बताई है कि ऐसा ऐसा गड़बड़ है, तो केवल उनको इतना ही बताना कि आपको कंस से बड़ा भय है, राक्षसों का भय है, इसलिए आप गुप्त रूप में करना, ये मत बताना कि वो मेरे पुत्र हैं और आप मेरे आचार्य हैं, कुलगुरु पुरोहित हैं, और आप ऐसा करोगे तो उनको संशय आएगा कि ये मेरे ही पुत्र हैं, उनके पास रखे हुए हैं, ऐसा सब नहीं बताया, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया खाली चेतावनी वाला। तो फिर वो जाते हैं बैठते हैं, तो समझाते हैं उनको कि आपको ना गुप्त रूप में करना है, तो अभी गुप्त रूप में कहाँ करेंगे, अरे गौशाला ऐसी जगह है और कोई भी नहीं होना चाहिए, वो कहते हैं हाँ मैं मेरी दो पत्नियां और दो बालक और आपके बिना उसमें कोई नहीं रहेगा और खाली गाय रहेगी वहां पर। तो यशोदा माई बड़ी प्रभावित होती है कि अरे वसुदेव की यहां से गर्ग मुनि आए हैं, सुना है बड़े पंडित हैं, त्रिकालदर्शी हैं, बड़े सिद्ध पुरुष हैं, महात्मा हैं, बड़ा ज्ञान है इनको, तो उनका ज्ञान भी थोड़ा परख लेते हैं। यशोदा मैया कहती है मेरे लाला को रोहिणी तो अपने गोद में रखना, और तेरे लाला को मैं मेरे गोद में रखती हूँ, और फिर हम जाएंगे और फिर नाम रखने के लिए बोलेंगे। तो वो पहले यशोदा माई अपने गोद में बलराम जी बैठे हैं ना, मतलब रोने के पुत्र हैं और कहते हैं भाई बाबा बताइए इसका भविष्य बताइए। तो गर्गमुनि आंख बंद करके ध्यान करते हैं और एक सुंदर श्लोक बोलते हैं कि ये रोहिणी का पुत्र है, उसका गुणगान करने लगते हैं। तब मैया समझ जाती है कि ये तो बहुत सिद्ध महात्मा है, इनको सब पता है। तो फिर बाद में वो क्षमा मांगते हैं कि हमने आपसे थोड़ा सा मजाक करने का प्रयास किया। और फिर इस तरह से दोनों का नामकरण विधि होता है गौलोक गोकुल के गौशाला में। हरे कृष्णा। एक माखन चोरी की कहानी बताते हैं आपको। वो जब छोटे थे ना तो उन्होंने 3 साल होने के बाद में उन्होंने विनती किया, बार बार जिद किया तो उनको बछड़ों का भार दे दिया। और जैसे ही वो थोड़े से बड़े हो गए तुरंत चोरी करना शुरू किया उन्होंने। तो जा जाकर गोपियों के घर माखन चुराते थे। बहुत सारी कहानियां है लेकिन एक कहानी बताता हूँ। दूध वाली कहानी अलग है, दही वाली अलग है, माखन वाली अलग है। तो दही वाली कहानी आपने सुनी नहीं होगी तो मैं आपको दही वाली कहानी बताता हूँ। तो एक गोपी क्या है ना, गोपियाँ कैसे थी, वो रोज जब दूध निकालती थी तो कृष्ण का ही ध्यान करती थी। जब उसका क्या जमाती थी दही तो भी उनका ध्यान करती थी। जब मंथन करती थी उनके ही गीत गाती थी। जब मक्खन बनाती थी भी उनके गीत गाती थी कि हमारे घर पर आ जाए खा ले, चोरी करने के लिए हमारे ही घर आ जाए। तो एक गोपी के पास बहुत सुंदर दही था। और आपको पता होगा कि हमारे दहियों को कोई सुगंध वगंध नहीं आता है आजकल, हमारे गुलाब को भी नहीं आता है। गेंदे के फूलों का वर्णन भी शास्त्र में किया है, उसके अंदर इतनी सुंदर सुगंध हुआ करती थी गेंदे के फूल में। हाँ, कई प्रकार के नाम है उसके, झंडे के, गेंदों के फूल के। तो वो हर प्रकार के वस्तुओं को सुगंध है और शरीर को भी सुगंध है, अलग अलग वो भी विविधतापूर्ण है। तो ऐसे दही को भी सुगंध है। तो उसने क्या किया, कृष्ण को अट्रैक्ट किया अपने घर पे और दही का मटका अपने उखल के अंदर रख दिया और उखल रख के उस पर बैठ गई। तो कृष्ण आए घर पे ढूंढते ढूंढते, उनको तो खुशबू तो आ रही है। वो कहते लाला दही चाहिए तुम्हें, हाँ जाओ अंदर जाके ले लो, जहां पर रखा है जाके ढूंढ के निकालो, आज आपकी परीक्षा है, आप ढूंढ के निकाल लो दही कहाँ है। तो पूरा महल ढूंढ के आता है, कहीं दही नहीं मिलता है। और जैसे ही इस गोपी के पास में तो खुशबू आती है दही की उसको, वो समझ जाते कि इसी के पास कहीं है। फिर ध्यान में आता है कि इसी के उखल के नीचे छुपा के रखा हुआ है। तो गोपी बहुत बहुत सयानी बन के जा रही है। तो अचानक जाके मधुमंगल को बोलते हैं जाओ उसके गौशाला में बछड़ों को छोड़ दो। मधुमंगल जाता है और बछड़ों को दोरी से मुक्त कर देता है और बछड़े सारे जाके मैया को अपने अपने चिपक जाते हैं। फिर मधुमंगल भाग भाग के आते हैं, अरे गोपी तुम्हारे सारे बछड़े छूट गए हैं, वो अपनी अपनी गायों को दूध पी रहे हैं, अभी शाम को दूध खत्म हो जाएगा, कुछ दूध नहीं मिलेगा। तो गोपी तुरंत अपने वहां से भाग जाती है, तुरंत उखल निकाल के पूरा मक्खन खा लेते हैं। जैसे गोपी लौट के आती है पूरा मक्खन खा ली, लाला के दोनों हाथों में मक्खन और अपना दही और खा रहे हैं वो। गोपी तू बहुत होशियार बन रही है, हाँ लेकिन तू जानती नहीं तुझसे मैं होशियार हूँ। इस तरह से हमेशा अधिकतर बछड़ों को छुड़ाकर गोपियों को भगाते थे वो, और फिर अंदर जाकर उनके मक्खन को दही को दूध को चुराते थे। ऐसा है, दूध की कहानी भी ऐसी है। एक बार सब लोग बैठे थे, बच्चे लोग कॉल बाल, और वहां पर मधुमंगल दूर से आ रहा था। सारे ग्वाल बाल यहाँ बैठकर अपने अपने जो डिब्बा में जो मिठाइयाँ मधुर व्यंजन बनाए माँ के माँ ने दिए हैं वो सब लोग एक दूसरे को दे रहे थे। हाँ, निकाल कर दे रहे थे। साहिल भगवान सुन रहे हो ना, तो एकदम ध्यान में चले गए वो, एकदम डीप। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा दूध पीने को ला जाओ, इसलिए मैंने बुला लिया उनको। तो वैसे ही ये लोग सब लोग देख रहे हैं और अचानक उनको ध्यान में आता है कि मधुमंगल दूर खड़ा है और बड़े भगोने में अकेला दूध पी रहा है, और वो सोच रहा है कि मैं यहाँ जाऊँगा तो मुझे वो शेयर करना पड़ेगा, फिर मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिलेगा, मुझे तो पीना है। तो दूर खड़ा देखे घटाघट पी रहा है वो। तो सब ग्वाल बाल देख लेते हैं, तो सब उसकी ओर गति से भागते हैं। तो लोगों को अपनी गति अपनी ओर भागते हुए आते हुए देखकर वो क्या करता है, पूरा मटका ही अपने मुंह में लगा लेते हैं और घटाघट पीने लगता है। जब तक वो ग्वाल बाल पहुंचते हैं अपने गाल जो है ना गुलचा भर लेता है। और भागने का प्रयास, तो भगवान उसको सब ग्वाल बाल पकड़ लेते हैं और भगवान उसके दो गालों पर गुलचा मार देते हैं। इसे गुलचा मार देते हैं तो उसके मुंह से दूध की धार निकलती है, तो भगवान उसको ऐसे पकड़ते हैं डायरेक्ट उसके मुंह से मधुमंगल महाप्रसाद पी लेते हैं। कितना प्रेम है भगवान का अपने बालकों पर। हाँ, ये सब देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो रहे हैं, ये क्या है सब, क्या ये हमारे भगवान है जिसका हम लोग कितना, हाँ ओम सहस्त्र शीर्षा सहस्त्रपाद, इतना बड़े बड़े मंत्र बोलते हैं भोग लगाने के लिए, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय, कितने नियम से करना पड़ता है, और ये डायरेक्टली अपने ग्वाल बाल के मुख में घुसा हुआ निकाल कर खाते हैं। बचपन में ना ऐसा होता था, जैसे अभी शादी करके चले गए द्वारका में, तो रुक्मिणी खिला रही उनको, और रुक्मिणी क्या उन्हें भाग्य लक्ष्मी, उनकी भाग्य लक्ष्मी है वो, परम भाग्य लक्ष्मी, वो अपने हाथों से बना रही है और हाथों से खिला रही है, हाथों से पंखा कर रही है खिलाते वक्त, और हमारे द्वारकाधीश महाराज रो रहे हैं। क्यों रो रहे हो, कुछ व्यंजन में कुछ नमक ज्यादा, कुछ तेल ज्यादा, मिर्ची ज्यादा पड़ी क्या? नहीं नहीं, वो इतने आपने प्रेम से बनाए, आपके व्यंजनों में कोई दोष नहीं है, फिर क्यों रो रहे हो? तो वो कह रहे हैं कि आपके व्यंजनों का स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता मैं, लेकिन मेरी मैया जो सख्त प्रसाद अपने मुंह में डालकर चबाकर अपनी लाल रस से मिलाकर मुलायम करके हुए मुंह से निकालकर जो मुझे खिलाती थी, उसका स्वाद इसमें नहीं है। इसका मतलब मैया हमेशा सख्त प्रसाद अपने मुंह में डालकर उसको चबाकर उसको थोड़ा सा प्री डाइजेस्ट करके निकाल कर लाला को खिलाते थे। पंछी कैसा करते हैं देखा ना आपने, पंछी अपने मुंह में लेके आते हैं, थोड़ा सा उसको चबाते हैं, फिर अपने बच्चों के मुंह में डालते हैं उसको, उस तरह से मैया उनको खिलाती थी। वे कौन सा नियम पालन कर रहे हैं मैया बताओ, कौन से शास्त्र को फॉलो कर रही है? एक ही शास्त्र है उनका, प्रेम शास्त्र। उस प्रेम शास्त्र में कोई नियम नहीं होता है, सारे नियम उसके सामने फेल हो जाते हैं, जो करे वही भगवान को स्वीकार हो जाता है, ऐसा प्रेम शास्त्र है वो। उस प्रेम को चखने के लिए भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं, अरे मैं तो वैकुंठों का ऐश्वर्य, वहां के व्यंजन, वहां के साधन, वो सब छोड़कर मैं आता हूं ब्रज में ये गोपियों के छाछ चुरा कर खाने के लिए। जो चुरा कर खाने में मुझे आनंद है, वो वैकुंठों का वो ऑफिशियल आनंद जो है ना मिलता है 56 भोगों का, उसमें नहीं आता है मुझे, उसको छोड़कर मैं आया हूं ब्रज में। अभी एक आखिरी कहानी बताता हूं। तो ये जा रहे हैं रोज बछड़ों को लेकर चराने के लिए, तो अभी आप जानते हैं ना मैया ने उनको बार बार, एक बार नहीं अनेक बार जूते के लिए रिक्वेस्ट किया है, तो वो रिक्वेस्ट कर रही है जूता ले लो, तो ये बोल रहे नहीं, मुझे पूर्णमासी ने कहा था कि ये वृंदा देवी का वृंदारण्य है, इस पर जूता पहन के चलना नहीं चाहिए, अनादर होगा उसका, मैं जूता नहीं पहनूंगा। तो फिर जाती है यशोदा मैया पूर्णमासी के पास, क्या आपने उनको ऐसे कहा था क्या? हाँ मैंने तो कहा था उसको, लेकिन मैंने जो कहा था वो उसको समझने वाला कारण बताया था, लेकिन उसका सही कारण यह है कि मैंने क्यों मना किया था कृष्ण को जूता पहनने के लिए, क्योंकि जैसे ही उसके चरण कमल ब्रज भूमि को स्पर्श करते हैं, सूखे हुए घास भी नवनीत बन जाते हैं, नव यौवन प्राप्त बन जाते हैं, और उनके चरण कमल ब्रज भूमि पर पड़ते ही ऐसा तेज उत्पन्न होता है कि सारी ब्रज भूमि ऐसी तेजस्वी हो जाती है, ऐश्वर्य चैतन्य लाइफ जीवन ब्रज भूमि के अंदर पैदा होता है। आप देखना चाहती हो तो चलो मेरे साथ। तो पूर्णमासी देवी यशोदा माई को केदारनाथ ले गई है, किधर, काम्य वन के अंदर, और वहां पर पहाड़ पे चढ़ते हुए चरण चिन्ह उनको दिखाती है, लाल से रंग के चरण चिन्ह अनंत दिव्य चिन्हों के साथ में, उनमें से दिव्य प्रकाश निकल रहा है, और जैसे ही वो चरण रखे हैं वहां पर पूरी हरियाली सब जगह छाई हुई है, और जैसे ही उसको यशोदा माई स्पर्श करती है ना, उनके अंदर अनंत तेज और अनंत चैतन्य उत्पन्न होता है, और बार बार वो लगाकर अपने सर पे लगाती है और अनंत दिव्य अकल्पनीय आनंद का अनुभव करती है। फिर वो पूर्णमासी से कहती है अभी इसके बाद में मैं उसको जूता पहनने के लिए जिद नहीं करूंगी। ऐसे उनका जो वर्णन है वो कवि कर्णापुर बिल्व मंगल ठाकुर अपने कवि क्या कहते हैं उसको कृष्ण कर्णामृत में करते हैं, उनके चरणों की महिमा बताते हैं कि कैसे ब्रजभूमि का जीवन है स्वयं भगवान के चरण कमल। इसलिए पृथ्वी देवी बहुत आनंद में हो गई थी जब कृष्ण का जन्म का ऐलान हो गया कि वही चरण करण कमर अब मेरा अलंकार बनेंगे, मेरा आभूषण बनेंगे, मुझको सुशोभित करेंगे, तो मेरे पति हैं, भू देवी के पति हैं वो, और वो अभी अवतार लेकर मुझे पवित्र करने वाले हैं, मेरा श्रृंगार करने वाले हैं। जैसे अनंत लीलाओं के माध्यम से भगवान ने सभी ग्वाल वालों को ब्रजवासियों को रिझाया, जो आनंद वो वैकुंठों में भी किसी को दे नहीं पाए ना देते हैं, वो सारा क्या कहते हैं ना अनएक्सप्लेनेबल, किसी भी रूल से उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप, कैसे कैसे कर सकते भगवान। जैसे जैसे जब उन्होंने मुंह खोला ना मैया का, मट्टी खाई, कोई अवतार ने मट्टी खाई क्या आज तक? नरसिंह देव ने मट्टी खाई, वामन देव ने मट्टी खाई, सुना आपने कभी? मत्स्य अवतार ने मट्टी खाई, हाई ग्रीव ने मट्टी खाई, कभी सुना क्या आपने? कृष्ण भगवान की लीला ऐसे अनोखी है, वो मट्टी खाते हैं तो मुंह खोलते ना तो आचार्य बताते हैं कि उनके मुख के अंदर फुल साइज का ब्रह्मांड था, ऐसा वो कंडेंस नहीं था पेट में समाने के लिए, उनके पेट के अंदर पूरा पूरा पूरे साइज का वह ब्रह्मांड था, और वो पूरे साइज का होने के बावजूद भी छोटे से पेट में समाया हुआ था, और वो पूरा साइज का ऐश्वर्य, फुल साइज का ऐश्वर्य उनके छोटे से पेट में होने पर भी उनके बाहर भी मौजूद था। यू अंडरस्टैंड, द सेम ब्रह्मांड इज इनसाइड द बॉडी ऑफ कृष्णा एंड आउटसाइड द बॉडी ऑफ कृष्णा ऑल्सो, ओनली कृष्णा कैन डू इट। इस प्रकार का जो आनंद है उनका लीला का, वो केवल कृष्ण ब्रज में ही प्रकट कर सकते हैं, और वो वैकुंठ में ऐसा लीला प्रकट नहीं करते, क्योंकि ब्रजवासियों के अंदर प्रेम है भगवान के लिए, वो भगवान के ऐश्वर्य से, शक्ति से, प्रभाव से प्रभावित नहीं है, वो भगवान के किसी चीज से प्रभावित नहीं है, भगवान पर केवल प्रेम करते हैं, वो निरपेक्ष प्रेम करते हैं। उस निरपेक्ष प्रेम से लालायित होकर भगवान ब्रज में जाकर ऐसे अद्भुत अद्भुत लीला करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।